21 अगस्त दिन मंगलवार दिन भर मैं हूँ रेहान फदल। केरल में जल स्तर उतरना शुरू। राज्य सरकार ने बाढ़ पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। उधर छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा।
तो पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और जो एडजॉइनिंग उड़ीसा का क्षेत्र है वहाँ पर लो प्रेशर होने के कारण छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग हैं वहाँ पर अति भारी वर्षा भी एक दो स्थानों पर हो सकती है।
बताएंगे उत्तराखंड में क्यों किसान खेती छोड़कर कर रहे हैं पलायन।
पहाड़ों में जो खेती से लोग पीछे हट रहे हैं विशेष कारण यह है कि एक तो पहाड़ी क्षेत्रों में मंडियों की व्यवस्था न होना सबसे बड़ा सवाल होता है। किसान खेती करता है और उसको लागत इतना मूल्य इतना अधिक आता है कि वो सड़क तक नहीं पहुंचा पाता।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। केरल में बारिश कम होने के बाद कुछ इलाकों में पानी कम हो रहा है और लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बाढ़ प्रभावित एर्नाकुलम, त्रिशूर, पथनम थिट्टा, अल्फुजा और कोल्लम जैसे जिलों के कई इलाकों में पानी का स्तर अभी भी कम नहीं हुआ है। केरल में 8 अगस्त को आई भारी बारिश के बाद अब तक 350 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत सरकार ने प्रसिद्ध मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप से कहा है कि वो गलत संदेश फैलने से रोकने के लिए और कदम उठाए। हाल के दिनों में व्हाट्सएप पर गलत आरोपों और अफवाहों के संदेश फैलने के कारण कई हमले हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीबीसी से कहा कि व्हाट्सएप के लिए ज़रूरी है कि वो भारत में अपना बिजनेस ऑफिस खोले और अपनी पेमेंट सर्विस को शुरू करने से पहले वो भारतीय कानून को लेकर जवाबदेह बने। जुलाई में व्हाट्सएप ने कुछ अहम कदम उठाते हुए किसी संदेश को एक साथ कई लोगों को भेजने की सीमा तय कर दी थी। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने देश में चीन के दो बड़ी मूल ढांचा परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश इसका खर्च नहीं उठा सकता है। ये दो पाइपलाइन और रेल लिंक परियोजनाएं थीं जिसकी कुल लागत 20 अरब डॉलर थी जिसे पिछले महीने रोक दिया गया था। बीजिंग गए महातिर ने पुष्टि की थी कि वो इस पर और आगे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली मलेशियाई सरकार ने इन परियोजनाओं पर बहुत धन खर्च करने पर सहमति जताई थी। चीनी विदेश मंत्री के प्रवक्ता लू कांग ने कहा दोनों देशों को साथ काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री महातिर ने अपने दौरे के दौरान इस बात पर बल दिया था कि चीन का विकास मलेशिया के लिए अवसर है। चीन मलेशिया का अब सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। व्यापारिक सहयोग दोनों देशों के लोगों के लिए लाभ लेकर आता है लेकिन सहयोग के दौरान इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि अलग अलग समय पर कई दिक्कतें आती हैं। ये थे चीनी विदेश मंत्री के प्रवक्ता लू कांग के शब्द। देश की बेलगाम अर्थव्यवस्था पर काबू पाने के लिए वेनेजुएला ने नए बैंक नोट जारी किए हैं जिसके बाद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी कराकस में मौजूद बीबीसी संवाददाता ने कहा कि बैंकों और एटीएम मशीनों के आगे लाइनें लगी हैं और यहां तक कि ऑनलाइन पेमेंट के साथ भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेनेजुएला के नए बैंक नोट में पुराने नोटों के मुकाबले 5 जीरो कम किए गए हैं। गिरती अर्थव्यवस्था के बीच इसे राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है लेकिन इसको लेकर संदेह भी पैदा किए जा रहे हैं और मंगलवार को विपक्ष ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। म्यांमार की नेता आंग सान सूची ने सेना के साथ अपने रिश्तों पर कहा है कि वो उतने खराब नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रिमंडल में 3 सैन्य प्रमुख बहुत प्यारे थे। सिंगापुर में उनके इस भाषण के बाद दर्शक हंसने लगे। आंग सान सूची तकरीबन 15 साल तक सेना द्वारा घर में नजरबंद रहीं। म्यांमार सेना के खिलाफ रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाने के आरोप हैं जिसके कारण लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को भागकर बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी। सूची ने कहा है कि उनकी सरकार बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमानों की स्वैच्छिक सुरक्षित और सम्मानित वापसी चाहती है।
The IDPs have to be sent back by Bangladesh. The returnees have to be sent back by Bangladesh. And we can only
आंतरिक रूप से विस्थापित हुए लोगों को बांग्लादेश से वापस भेजना होगा और उन्हें भेजा जाना है। हम केवल सीमा पर उनका स्वागत कर सकते हैं, ये हमारे समझौते का हिस्सा है। पिछले साल नवंबर में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के हिसाब से हम उन्हें 23 जनवरी के बाद से वापस लेने के लिए तैयार हैं। ये थे म्यांमार की नेता आंग सान सूची के शब्द। इसराइल ने अपने बंदूक नियंत्रण नियमों में ढील दी है जिसके बाद लाखों आम लोग लाइसेंस के योग्य हो जाएंगे। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गिलार्ड एडन ने कहा कि आम लोगों के पास अधिक हथियार होने से उन्हें हमले रोकने में मदद मिलेगी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। बाढ़ से हुई तबाही झेल रहे केरल की मदद के लिए दुनिया भर से लोग आगे आ रहे हैं। अब तक यहाँ बाढ़ और बारिश से करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस बीच संयुक्त अरब अमारात सरकार ने केरल की सरकार को 700 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। थोड़ी देर पहले मैंने केरल गए बीबीसी संवाददाता सलमान रावी से बात की और केरल में बाढ़ के ताजा हालात के बारे में पूछा।
आज जो कई दिनों के बाद सूरज की किरणें आईं, वो एक तरह से उम्मीद की किरणों के रूप में आई लोगों के लिए, क्योंकि पिछले 12 दिनों से घने बादल छाए हुए थे और लगातार बारिश हो रही थी। सूरज की किरणों के आने के बाद लोगों की उम्मीद भी जगी है कि जो पानी का स्तर है वो नीचे होगा और कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें निकाला जा सकेगा। अभी जैसा पता चल रहा है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कि 10 लाख से ज्यादा लोग बचाए जा चुके हैं, उनको राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और अब तक जो इसमें लोग मरे हैं उनकी तादाद 400 है, जो जब से मानसून यहाँ जून में आया था। लेकिन सिर्फ पिछले 12 दिनों के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 240 लोगों की मौतें हुई हैं 12 दिनों में, ये जो बारिश और बाढ़ है इसकी वजह से।
ये बताइए, राहत कार्य किस तरह से चल रहा है, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है राहत दलों को?
देखिए, कई क्षेत्रों पर चुनौतियां हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है कि जो 10,000 किलोमीटर का रास्ता है सड़क का, हाईवे का, जिसके पुल उड़ गए हैं और पुलिये बह गई हैं, सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, उनको दोबारा कैसे बनाया जाए ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, खासतौर से अलापुजा का इलाका है, चिंगानूर का इलाका, त्रिशूर का जो इलाका है जहाँ मैं हूँ, एर्नाकुलम, मल्लापुरम, अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये पुल्लू है, मैंने कोशिश की जाने की लेकिन वहाँ पहुँचा नहीं जा सक रहा क्योंकि पूरा इलाका एक आईलैंड में तब्दील हो गया है। और यह है कि यहाँ दूसरी चुनौती सबसे बड़ी यह है कि खबरें ऐसी मिल रही है कि पानी का स्तर जब नीचे जा रहा है उसके बाद सर्पदंश की घटनाएं बढ़ रही हैं, कई लोग जो है शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है कि केरला को भगवान का अपना देश कहा जाता है और यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से सांपों की संख्या भी काफी है, खासतौर से किंग कोबरा की जगह है, ये वाइपर है और बैंडेड क्रेट है, ये सारे सांप यहाँ जहरीले सांप पाए जाते हैं। अब चूंकि जल का स्तर कम हो रहा है तो ये घटनाएं भी बढ़ रही है। दूसरी बात जो चुनौती सबसे बड़ी है वो है प्रदूषित जल की वजह से, चूंकि बहुत सारे जानवर मरे हैं, लोगों को बचाया गया है लेकिन बहुत सारे जानवर बच नहीं पाए और इसमें बह गए और मर गए, जिसकी वजह से पानी प्रदूषित हो गया है और वो बीमारी फैलने का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो डिसइन्फेक्ट करना, जिन घरों से पानी का स्तर कम हुआ है उनको डिसइन्फेक्ट करना और लोगों को दवाइयां पहुंचाना। अब ये 10,000 किलोमीटर की रोड जो टूटी पड़ी है ये कब तक बन पाएगी, ये इसमें तो वाकई में काफी वक्त लगेगा। वैसे केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की जो घोषणा की है और यूएई की सरकार ने जो 700 करोड़ रुपए की घोषणा की है राहत की, उससे शायद थोड़ा राहत तो मिलेगी यहाँ के लोगों को लेकिन वक्त बहुत लगेगा।
ये थे केरल से बीबीसी संवाददाता सलमान रवि। उधर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राज्य के दक्षिणी हिस्से का दूसरे राज्यों से संपर्क टूट गया है। इसके अलावा सैकड़ों गांवों में बाढ़ के पानी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद बस्तर की अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के सुकमा में शबरी नदी में आई बाढ़ के कारण जिला मुख्यालय का दूसरे विकास खंडों से संपर्क टूट गया है। कोंटा, सुकमा और भद्राचलम के अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मार्ग भी पूरी तरह बंद हैं। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर जगह जगह पानी भरा होने के कारण इस सड़क पर आवागमन बंद कर दिया गया है। राज्य के बीजापुर में बाढ़ के पानी के कारण 65 से अधिक मकान ढह गए हैं और 3,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। गरियाबंद इलाके में भी बाढ़ के कारण कम से कम 3 पुल पुलिया ढह गए हैं, जिसके बाद इस इलाके से पड़ोसी राज्य ओडिशा का संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रकाश खरे का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में बस्तर के इलाके में भारी बारिश का खतरा बना हुआ है।
पिछले 24 घंटे के दौरान भी छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से वर्षा हुई। बस्तर संभाग में विशेष रूप से भारी वर्षा दर्ज की गई है और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और जो एडज्वाइनिंग उड़ीसा का क्षेत्र है उससे लगा हुआ, वहाँ पर लो प्रेशर होने के कारण छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग हैं वहाँ पर अति भारी वर्षा भी एक दो स्थानों पर हो सकती है।
फिलहाल बीजापुर और सुकमा समेत बस्तर के दूसरे इलाकों में भी बचाव और राहत का काम तेज कर दिया गया है, लेकिन इस बीच अगर बारिश नहीं रुकती है तो राज्य के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ का संकट और गहरा जाएगा। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शासन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक वैमनस्य फैलाने वाले भाषण के सिलसिले में नोटिस जारी किया है। अदालत ने ऐसा एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देने से मना कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने मानकर केस खारिज कर दिया था। देश की सबसे ऊंची अदालत के इस हुक्म का योगी आदित्यनाथ की सरकार पर क्या असर हो सकता है, बता रहे हैं फैसल मोहम्मद अली अपनी इस रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश शासन से नोटिस का जवाब 4 हफ्तों में मांगा है। याचिकाकर्ता परवेज परवास कहते हैं,
जी मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है और एक ऐसा मामला जिसमें इंसाफ के दरवाजे बंद हो गए थे वो फिर से खुल गए।
लेकिन राजनीतिक विश्लेषक शरद प्रधान का मानना है कि साल 2007 के इस मामले में आदित्यनाथ चाहे बरी हो या उन्हें सजा मिले, फायदा उन्हीं को होगा।
अगर कोर्ट इनके खिलाफ करता है तो ये अपने सारे घोड़े खोल देंगे, वहाँ पे जन आंदोलन जिसे कहते हैं वो करा देंगे, अपने फॉलोइंग बहुत है, गोरखनाथ के मंदिर के नाम पे जो तमाम फॉलोइंग है ये उसका नाजायज फायदा उठाएंगे, उससे हंगामा करवाएंगे। और अगर इनके खिलाफ कुछ नहीं होता है तो बोलेंगे देखिए साहब हमारी हमने तो कुछ किया ही नहीं था, बिल्कुल चित भी मेरी पट भी मेरी वाली बात है।
आरोप है कि योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण की वजह से गोरखपुर शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे जिसमें कई लोगों की जाने गई। आदित्यनाथ तब गोरखपुर से सांसद थे। इस मामले की जांच उसके बाद सत्ता में आई 2 राजनीतिक दलों बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों के वक्त घिसट घिसट कर जारी रही और जब 2014 में क्राइम ब्रांच ने अखिलेश सरकार से मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी तो उत्तर प्रदेश शासन इस पर बैठी रही और फिर साल 2017 में योगी आदित्यनाथ खुद सूबे के कर्ता धर्ता बन गए, जिसके बाद शासन ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। हिंदी अखबार अमर उजाला के संपादक शरद गुप्ता हुकूमत के इस फैसले की नैतिकता पर सवाल उठाते हैं।
दरअसल कोई भी मुकदमा जो लिखा जाता है पुलिस की ओर से उसमें वादी स्टेट होती है, तो अगर मुख्यमंत्री उस स्टेट का जो हेड है वो खुद ही कह रहा है कि सर मेरे खिलाफ कोई मुकदमा हो गया था और इसको जल्दी से हो गया था, इसको खत्म किया जाना चाहिए, तो ये गलत बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने सही तौर पे सरकार से कहा है कि आप 4 हफ्ते में जवाब दें कि सर ये क्यों खारिज नहीं होना चाहिए।
मगर उनका कहना है कि इस मामले में किसी तरह का फैसला अगले साल के आम चुनाव के पहले नहीं होगा तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। वो इस अंदेशों को भी गलत बताते हैं कि आदित्यनाथ को हटाने की किसी तरह की कार्रवाई नरेंद्र मोदी या बीजेपी की ओर से होगी। शरद प्रधान मुजफ्फरपुर दंगों से जुड़े मामलों को भी वापस लेने की योगी सरकार की कोशिश को बीजेपी और योगी की पॉलिटिक्स से जोड़कर देखते हैं।
महज जाटों के वोट की बात नहीं, जाटों का वोट तो लिमिटेड है वेस्टर्न यूपी के चंद जिलों तक, पूरे जो इनके हिंदुत्व ब्रिगेड है उसके लिए ये मैसेज जाता है कि साहब देखिए कितना सब कुछ कर लिया लेकिन हमने इनके खिलाफ कुछ होने नहीं दिया।
हालांकि जिला प्रशासन ने फिलहाल मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े मामलों को वापस लेने में असमर्थता जाहिर की है, लेकिन कुछ लोग इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान का नाम वहां हुए दंगों के सिलसिले में बार बार आ रहा था। बीजेपी ने न सिर्फ उन्हें टिकट दिया बल्कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें साल 2014 में ही सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर शामिल कर लिया था।
ये थी फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में साल 1995 में जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक नया दस्ता बनाया गया था और इस दस्ते का नाम SPOs यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स रखा गया था। 23 साल पहले बनाए गए इस दस्ते के हजारों जवान आज किस हाल में हैं, सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की इस रिपोर्ट में।
जम्मू कश्मीर पुलिस में एक आम पुलिस कर्मचारी की तरह ही हजारों काम करने वाले SPOs भी वैसे ही ड्यूटी देते हैं जैसे एक आम पुलिसकर्मी देता है। वर्ष 1995 में जब इस दस्ते का गठन किया गया था तो इन SPOs की 1500 प्रति महीने तनख्वाह मुकर्रर की गई थी। इस समय इन SPOs की तनख्वाह 6000 है। जम्मू कश्मीर में इस समय एसपीओज की संख्या 35,000 है। इस दस्ते के गठन से लेकर अब तक चरमपंथी अभियानों और चरमपंथी हमलों में 500 के करीब एसपीओज मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी डॉक्टर एसपी वैद कहते हैं,
जब से टेररिज्म शुरू हुआ है 500 एसपीओज ने शहादत दी, एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। ऑपरेशंस में इन्वॉल्वमेंट होती है और उसका उनको हक भी मिलता है।
एसपीओज की नौकरी करने वाले कई लोगों ने बीबीसी के साथ बातचीत में बताया कि जो तनख्वाह उन्हें दी जाती है उस तनख्वाह से वो अपने परिवार का पेट पालने की जंग जीत नहीं पा रहे हैं। बीते 22 वर्षों से एसपीओ की नौकरी करने वाले अली मोहम्मद लोन कहते हैं,
मगर 6,000 आज तो इतना महंगाई है कि कहने की बात नहीं है। इस वक्त मेरे पास मतलब 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। एक लड़की वो ग्रेजुएशन कर रही है, दूसरी मैट्रिक में पढ़ रही, तीसरी 12th में पढ़ रही है। और हमने बार बार रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि हमें परमिट करो, परमिट करो।
एक और एसपीओ ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि 2 दशकों के बाद भी उनकी हालत नहीं बदली। हम क्या करें, हमारी हालत 2 दशकों के बाद भी नहीं बदली है। वो ये भी बता रहे थे कि हमें जहां एक तरफ चरमपंथियों की तरफ से डराया और धमकाकर नौकरियां छोड़ने के लिए कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ हर किस्म की ड्यूटी देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। 5 महीने पहले उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में चरमपंथियों के साथ एक मुठभेड़ में एसपीओ मोहम्मद यूसुफ बजाड़ा मारे गए थे। उनके परिजनों ने बीबीसी को बताया कि 5 महीने गुजर गए लेकिन अभी तक मुआवजे के पैसे नहीं मिले हैं। इकबाल कहते हैं कि उनके पापा ने लड़ते लड़ते अपनी जान देश के लिए निछावर तो कर दी लेकिन उनकी शहादत की कोई कदर नहीं हुई। वो कहते हैं, अब शहीद होना भी एक गलती है।
5 महीने हो गया जिस बात को और हमें कोई कंपनसेशन नहीं मिली। सर बड़े अफसोस की बात है कि शहीदों की फैमिली के साथ अच्छा नहीं होता। यहाँ पे ट्रीटमेंट बिहेवियर लोगों का अच्छा नहीं है। जिस ऑफिस में भी मैं गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करवाया गया और सर ऐसे बिहेव किया गया जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। ये तो एक कलंक है कि शहीद होना भी एक बुरी बात है। अब
इकबाल के मुताबिक अभी तक विभाग की तरफ से उन्हें सिर्फ 2.5 लाख मिल चुके हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि केस के कागजात बनाने की वजह से मुआवजा देने में देरी हुई है। सरकार मारे जाने वाले एसपीओज को 17.5 लाख का मुआवजा और परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी फराहम करती है। डीजी वैद का कहना था कि वो इस कोशिश में हैं कि जम्मू कश्मीर में काम करने वाले एसपीओज की नौकरी को सरकार परमानेंट करे। हालिया दिनों में दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके में ऐसी खबरें सामने आई है जिनमें बताया गया है कि 2 दर्जन एसपीओज ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दिया है। डीजीपी वैद इस हवाले से कहते हैं,
आपने देखा होगा एसपीओज और पुलिसमैन की फैमिलीज को टेररिस्ट जो हैं वो तंग करते हैं, हरास करते हैं। इसी तरीके की एक रिपोर्ट यहां से भी आई है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं।
आने वाले दिनों में क्या इन एसपीओज की हालत बदलेगी, इसका इंतजार सभी एसपीओज को है। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच।
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में बदहाल खेती और किसानों के हालात पर चिंता जताई है। अपने आदेश में पहाड़ी जिलों से हुए किसानों के पलायन के चिंताजनक आंकड़ों को शामिल करते हुए कोर्ट ने कहा है कि वो समय आ गया है जब उत्तराखंड के किसानों के अधिकारों को मान्यता देते हुए अब तक चली आ रही पूरी प्रक्रिया को उलट दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड में अब तक तकरीबन 2.25 लाख लोग खेती छोड़कर पलायन कर चुके हैं। उत्तराखंड में सिमटती खेती और इसके चलते हो रहे पलायन पर सुनिए रोहित जोशी की ये विशेष रिपोर्ट।
सरयू नदी के किनारे खूबसूरत उपजाऊ खेतों में हुड़के की थाप और हुड़किया बॉल का यह मधुर संगीत। पहाड़ी घाटी में नदी के किनारे सिंचाई वाले खेतों में रोपाई का यह नजारा है बागेश्वर जिले के बिलौना गांव का। इन खूबसूरत नजारों के बीच गाते बजाते उत्साह के साथ खेती करने वाले इन किसानों की जिंदगी की दुश्वारियां भी हुड़के की थाप के किन्हीं अंतरालों में मौजूद हैं, जिन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने एक ताजा आदेश में पढ़ा है। एक जनहित याचिका में अपने आदेश में अदालत ने एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौजूद कृषि भूमि में से केवल 20% पर ही खेती शेष रह गई है। उसके अतिरिक्त 80% कृषि भूमि या तो बंजर है या उसे दूसरे कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है और पिछले एक दशक में गांवों से तकरीबन 2,26,950 लोग खेती छोड़कर पलायन कर चुके हैं। अल्मोड़ा जिले के डोबा गांव के काश्तकार गोपाल गुर्रानी बताते हैं।
तो मैं सोचता हूं कि पहाड़ों में जो खेती से लोग पीछे हट रहे हैं, विशेष कारण यह है कि एक तो पहाड़ी क्षेत्रों में मंडियों की व्यवस्था न होना सबसे बड़ा सवाल होता है। किसान खेती करता है और उसको लागत इतना मूल्य इतना अधिक आता है कि वो सड़क तक नहीं पहुँचा पाता। दूसरा कारण अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक बहुत भारी है। ऐसी स्थिति में पहाड़ में लोग खेती छोड़ने को मजबूर हैं।
कॉलेज की अपनी पढ़ाई के बाद गाँव लौटकर खेती से रोजगार चलाने की मुहिम में जुटे पिथौरागढ़ के हटकेश्वर गांव के युवा काश्तकार सुरेंद्र बिष्ट कहते हैं,
पढ़ी लिखी यहाँ की जो उत्तराखंड की युवा पीढ़ी है उसका कृषि से रुझान बिल्कुल खत्म हो गया है। कृषि में जितना हम श्रम और समय देते हैं उसकी अपेक्षा में उत्पादन नहीं मिल पाता। दूसरा है कि यहाँ पे जो कृषि जोत का जो आकार है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कम होते चले जा रहा है। एक ही खेत में दो दो तीन तीन भाइयों का हिस्सा है और साथ ही उत्तराखंड बनने के 18 साल के बाद भी यहाँ पे चकबंदी नहीं हो पाई है, न स्वैच्छिक चकबंदी न सरकार के द्वारा।
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डीन गिरिजा पांडे इन हालातों के इतिहास में झांकते हैं।
जब हम उत्तराखंड में लैंड यूज की बात करते हैं, कृषि भूमि की बात करते हैं, तो हम करीब करीब 12.5-13% का आंकड़ा लेकर के आते हैं सरकारी तौर पे। इस 12.5% के इस आंकड़े में हमें ये देखना चाहिए कि अधिकांश जमीन जो बड़ा हिस्सा है वो मैदानी क्षेत्रों में कृषि जमीन का भूमि का हिस्सा है। यदि पर्वतीय क्षेत्र की कृषि को देखें तो वो हमें दिखाई पड़ता है कि वो 5-6% के बीच में आती है। तो पर्वतीय समाज के हाथ में तो कृषि को लेकर के जमीन ही उतनी बड़ी नहीं है, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो समाज अपना सस्टेनेबिलिटी के लिए कृषि आधारित प्रक्रियाओं पर निर्भर रहेगा, क्योंकि उसके पास लैंड होल्डिंग इतनी है ही नहीं और अधिकतम जो काश्तकारी है अधिकतम 2 हेक्टेयर से ऊपर किसी के पास नहीं आएगा, अदरवाइज तो बहुत ही न्यूनतम लैंड होल्डिंग्स पर्वतीय समाज के परिवारों के पास है। यदि हम उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त को नहीं करते हैं तो हम बहुत बेहतरीन विकास योजनाओं की परिकल्पना यहाँ पर नहीं कर सकते, ये हमें समझना चाहिए।
हालांकि यह याचिका वर्ग 4 की जमीनों के हस्तांतरण के मसले पर दायर की गई थी जिससे 54,000 किसान प्रभावित हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 8 मार्च 1995 के सरकारी आदेशों का पालन करते हुए गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1985 के तहत 6 माह के भीतर सभी पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों को पट्टे आवंटित कर दिए जाएं। उधर पलायन आयोग के मुताबिक उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के बाद से अब तक प्रदेश में 734 गांव पूरी तरह जनसंख्या शून्य हो गए हैं। वहीं 565 ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या 50% से कम हो गई है और यह सिलसिला थमता नजर नहीं आता। जो बचे हैं वे अपनी जरूरतों के लिए धरती के सीने को अब भी जोत रहे हैं। रोहित जोशी, BBC नैनीताल।
एशियाई खेलों के तीसरे दिन भारत के सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इस तरह भारत ने अब तक 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं और वो पदक तालिका में 7वें स्थान पर है। थोड़ी देर पहले मैंने जकार्ता गए खेल पत्रकार अमनप्रीत सिंह से बात की और भारत के प्रदर्शन के बारे में पूछा।
आज का दिन काफी अच्छा रहा, ज्यादा अच्छी खबर कलिंगदांग से आई। जैसे पहले 2 दिन में जो गोल्ड मेडल आए वो जकार्ता से रेसलिंग से आए, लेकिन आज जो गोल्ड आया ये कलिंगदांग में शूटिंग में। 16 वर्षीय निशानेबाज सौरभ चौधरी, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। वो पहली बार किसी सीनियर इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीनियर लेवल में, और दूसरी बात जिन निशानेबाजों के साथ वो कम्पीट कर रहे थे वो कोई मामूली निशानेबाज नहीं थे। 2010 के वर्ल्ड चैंपियन है जापान के टोमोयुकी मात्सुदा, उनके साथ कड़ी टक्कर थी उनकी, लेकिन उन्होंने अपने जो अंतिम से पहले वाला शॉट होता है सेकंड लास्ट शॉट उसमें उन्होंने बढ़त बढ़ाई और उसके बाद फिर गोल्ड मेडल जीत लिया। इसी इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में अभिषेक वर्मा भारतीय, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और खास बात यह है कि अभिषेक वर्मा भी सीनियर लेवल पर अपना पहला ही इवेंट खेल रहे थे, तो ये बहुत अच्छी बात है। शूटिंग के लिए एक और पदक आया है रजत पदक, और ये पदक भारत के लिए जीता है संजीव राजपूत ने। काफी एक्सपीरियंस निशानेबाज है, 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में उनका ये पदक है। खास बात यह है कि एशियन गेम्स में ये उनका पहला एकल वर्ग का मेडल है। इससे पहले उनके तीन मेडल हैं एशियन गेम्स में, लेकिन तीनों ही वो टीम स्पर्धा में आए हैं।
एक और पदक भारत को मिला है सेपक टाक्रा में, पहली बार भारत ने ये पदक जीता है इस इवेंट में।
ये पदक कल ही निश्चित हो गया था क्योंकि भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। जो भी चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती हैं वो हारे जीते मेडल पक्का है, ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का हो ही जाता है। तो आज थाईलैंड से ये मैच हम 0-2 से हारे, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल ये हो गया, ये ऐतिहासिक है। टेक्रॉ के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये वॉलीबॉल की तरह गेम होता है। वॉलीबॉल में आप सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, बाजुओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेक्रॉ में आप अपने शरीर के लगभग सभी अंगों का, पांव का, घुटनों का, चेस्ट का आप इस्तेमाल करके बॉल को एक तरफ से दूसरी तरफ कोर्ट के फेंक सकते हैं।
तीरंदाजी में क्या खबर है? तीरंदाजी में भी कुछ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, कैसा प्रदर्शन किया भारतीय आर्चर्स ने?
तीरंदाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लगभग अच्छा ही चल रहा था, लेकिन अंत समय में थोड़ा सा दीपिका कुमारी ने एक लूज शॉट खेला, उसकी वजह से उनकी रैंकिंग कम हुई। आज रैंकिंग का दिन था, रैंकिंग निर्धारित होनी थी और दीपिका इंडिविजुअल यानी एकल रिकर्व में 17वें नंबर पर क्वालिफाई करी है। उनके अलावा प्रोमिला डायमरी, ये भारत की दूसरी तीरंदाज थी, तीसरी तीरंदाज थी अंकिता भकत, ये तीनों मिलकर के अब भारतीय टीम को विमेन रिकर्व में रिप्रेजेंट करेंगे और भारतीय टीम की जो क्वालिफाइंग हुई है, जो रैंकिंग आई है, वो है 7वें नंबर की। तो दीपिका का स्कोर बेटर होना चाहिए था, लेकिन वो जो 10वें सेट में उन्होंने अंतिम शॉट खराब खेला, केवल 19 पॉइंट ले पाई। इससे पहले वो 28, 29, 30 इस तरह से स्कोर कर रही थी, उस एक शॉट ने उनको टॉप 10 से बाहर कर दिया। एक समय में वो 8वें नंबर पर चल रही थी।
ये थे जकार्ता से खेल पत्रकार अमनप्रीत सिंह। इस बीच दिव्या काकरान ने महिला कुश्ती में भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने चाइनीज ताइपे की चेन वेन लिंग को हराया। उधर क्रिकेट में नॉटिंगम में हो रहे तीसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के ऊपर अपना शिकंजा कस दिया है, लेकिन इंग्लैंड इस समय कड़ा मुकाबला करता हुआ उसे जीत के लिए 521 रन बनाने हैं। 4 विकेट उनके जा चुके हैं, जबकि भारत को जीतने के लिए अभी 6 विकेटों की और दरकार है। ज्योतिका सिंह इस मैच पर नजर बनाए रखे हैं, बताइए क्या है ताज़ा स्थिति?
जी, अगर देखा जाए तो दोनों टीम्स की दूसरी पारी में 7 विकेट खोकर 352 रन बनाए हैं इंडिया ने, जहाँ अभी इंग्लैंड ने 68 ओवर होने पर 4 विकेट खोकर 162 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट में जीत की दहलीज पर खड़ी है। इंग्लैंड की टीम चौथे दिन में 521 रनों के विशाल स्कोर का पीछा कर रही है। पहली पारी में हार्दिक पांड्या ने 5 विकेट लिए, तो हार्दिक पांड्या का मानना है कि ईशांत और वो एक बोलिंग यूनिट हैं।
Feeling amazing to be honest and I was not thinking much, I was just...
सच्ची बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मैच खेलने से पहले ज़्यादा नहीं सोच रहा था, मेरा सारा ध्यान अच्छा खेलने पर था। मैं और ईशांत एक बॉलिंग यूनिट की तरह हैं। हमारा एक ही प्लान था कि हमको अच्छा खेलना है। पिच बहुत अच्छी थी, हमारा साथ दिया और सब अच्छा रहा।
इसी के साथ देखा जाए तो केएल राहुल ने भी एक खास मुकाम हासिल किया। राहुल ने चौथे दिन लंच से पहले जो रूट का कैच पकड़ा था और अभी पिच पर बटलर और स्टोक्स मौजूद हैं।
और इस समय बटलर खेल रहे हैं 56 रनों पर, जबकि स्टोक्स के 42 रन हैं और गेंदबाजी कर रहे हैं अश्विन। अभी भी भारत को 6 विकेटों की दरकार, जबकि करीब करीब 1.5 दिन का खेल अभी बाकी है। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। केरल में बारिश कम होने के बाद कुछ इलाकों में पानी कम हो रहा है और लोग अपने घरों में लौट रहे हैं। बाढ़ प्रभावित एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोल्लम जैसे जिलों के कई इलाकों में पानी का स्तर अभी भी कम नहीं हुआ है। भारत सरकार ने प्रसिद्ध मैसेजिंग मोबाइल ऐप व्हाट्सएप से कहा है कि वो गलत संदेश फैलने से रोकने के लिए और कदम उठाए। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने देश में चीन के 2 बड़ी मूल ढांचा परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश इसका खर्च नहीं उठा सकता है। देश की बेलगाम अर्थव्यवस्था पर काबू पाने के लिए वेनेजुएला ने नए बैंक नोट जारी किए हैं, जिसके बाद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार की नेता आंग सान सू ची ने सेना के साथ अपने रिश्तों पर कहा है कि वो उतने खराब नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रिमंडल में 3 सैन्य प्रमुख बहुत प्यारे थे। रूसी मीडिया में ऐसी रिपोर्टें हैं कि देश के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने पुष्टि की है कि अफगान तालिबान अगले महीने मॉस्को में शांतिवार्ता में भाग लेगा। अफगानिस्तान के भविष्य पर रूस अपनी बहुपक्षीय वार्ता कर रहा है। पिछली बैठक में पाकिस्तान और चीन समेत अन्य क्षेत्रीय पक्ष शामिल थे। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि अमेरिका में लोकतंत्र और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले रूढ़िवादी समूहों से जानकारी चुराने की रूसी कोशिश को उसने नाकाम कर दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे राजेश चौहान, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।